वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। एक कथा मुझे आपको बतानी थी। रेडी सब लोग? अटेंशन। ये सच्ची घटना है एकादशी के विषय में, क्योंकि यहाँ पर पूरा महात्म्य एकादशी का ही है ना, आषाढ़ एकादशी, कार्तिक एकादशी। तो एक संत थे, उनका नाम है पहाड़ी बाबा, भारत में बहुत मशहूर है। और एक नहीं, ऐसे तीन है, प्रथम पहाड़ी बाबा, द्वितीय पहाड़ी बाबा और तृतीय पहाड़ी बाबा, ये तीनों बहुत महान हिमालय के संत थे। और एक उसमें से वृंदावन में भी आते थे और यात्रा भी करते थे बहुत सारी। तो एक दिन वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो उनके बाजू में भी एक गृहस्थ भक्त बैठा था, और वाराणसी में उसका दूसरा दोस्त जो है वो ज्वाइन हो गया उसको। तो बनारस के लोग जो होते हैं ना, वो पान खाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता है ना, बनारसी पान बहुत बचपन में हमने खाया है उसको, तम्बाकू वाला नहीं ऐसे ही, लेकिन बहुत अलग टेस्टी होता है वो। एक होता है पूना मसाला, वो अलग होता है, एक होता है बनारसी, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन बनारस के लोग पान खाने में मशहूर है। जैसे ही वो आया, उसका दोस्त ट्रेन में ज्वाइन किया, तो उसने उसको पान ऑफर किया, पान का डब्बा खोल दिया। तो उसने कहा कि मैंने अभी पान खाना छोड़ दिया है, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी में पान नहीं खाते। ऐसे वैष्णव लोग पान खाते ही नहीं है, लेकिन बनारसी लोग एकादशी को पान नहीं खाते, क्योंकि वो बाकी समय पान खाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने कब एकादशी करना शुरू कर दिया, तुमने कब एकादशी करना शुरू किया, मैं तुमको इतने साल से जानता हूँ, कभी तुमने एकादशी की बात नहीं की आज तक। तो कहते हैं कि एक ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई है, उसके वजह से मैंने एकादशी करना शुरू किया है। अब ये कथा आप ध्यान से सुनो। हाँ, कहते मेरे घर पे एक नौकर था, काम करने वाला लड़का था। एक दिन किसी कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई, कभी अपघात होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो युवा अवस्था में था लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो उसका फिर बॉडी लेके गए, सब कुछ काम किया उसका, एक साल गुजर गया। एक साल गुजरने के बाद में, ध्यान से सुनो, एक साल गुजरने के बाद में वो लड़का जैसा गया था उसी शरीर में उसके घर में प्रकट हो गया। तो ये आदमी डर गया, पुत्र हो तू गया था, मैं तो जला क्या है तुझे, तो यहाँ कैसे आ गया। बोला मेरे आपके पति बहुत प्रेम था इसलिए मैं आया। बोला कैसे आ गए तुम मरने के बाद। और कहते मैं अभी यमदूत बन गया हूँ। यमदूत बन गया हो, कैसे यमदूत बन गए। तो ये ध्यान से सुनना, वो बताता है यमदूत कैसे बनता है। जो 100 बार यमलोक पहुँचता है वो यमदूत बन जाता है। अभी वाइन लाइन तो वो सिंपल है ना, 100 बार यमलोक जाता है, मतलब क्या हुआ उसका, एक बार मनुष्य बना, पाप कर्म किया, फिर यमलोक गया, वहाँ से नरक भेजा गया, नरक की यातना भोगी, फिर वो 84 लक्ष के साइकिल में आ गया, फिर वो पूरा यात्रा करते करते फिर मनुष्य बन गया, फिर पाप किया, फिर यमलोक गया, फिर नरक गया, फिर वापस नरक की यातना भोगने के बाद फिर वो साइकिल में आ गया, 84 लाख साइकिल में, फिर मनुष्य बन गया इतना घूम के, फिर मनुष्य में आके फिर पाप किया, फिर नरक में गया। इस तरह 100 बार यमलोक को टच करने के बाद यमराज सोचते हैं कि इसको तो पूरा ट्रेनिंग हो गया अभी, इतने सारे 27 प्रकार के नरक है, उसमें सब जगह पर भोग के आया है, क्या क्या मिलता है, क्या मही मिलता है, सब पता है इसको, तो उसको यमदूत बना देते। तो मालिक हैरान हो गए, अरे यार इसका मतलब उसका सव्वा जन्म था, वो सव्वा मनुष्य का, उसमें भी पाप करके वो नरक में जा गया, तो उसको यमलोक ने यमदूत बना के भेज दिया। तभी ये मालिक डर गया जो कथा सुना रहा है, फिर तो मैंने उस बालक को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ की इसकी मृत्यु होने वाली है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं होने वाली है, आपके पास में किसी की मृत्यु होने वाली है। अरे वो तो कह, मुझे शादी होने वाली है, वो शादी में, नहीं नहीं उसको बोलो उसका समय आ गया है, शादी वादी भूल जाओ, उसको लेने आया हूँ मैं, तो जा रहा है, मैं जल्दी में हूँ, समय हो रहा है उसका, उसको उठाना है। तो जाने के पहले एक प्रश्न है मेरा, ये नरक से कैसे बचना है? ये प्रश्न आपके लिए रिलेवेंट है ना कि नहीं है? नरक से कैसे बचना है? तो वो यमदूत बने हुए बालक ने बताया, जो एकादशी का व्रत करता है वो नरक से बच जाता है। तो ये कहता है तब से मैंने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। ये शास्त्र में भी लिखा है, वो सच्ची कहानी में यमदूत ने बताया, उसके लिए नहीं है। वो कहता है कि तू ऐसे बालक के स्वरूप में कैसे आया? यमदूत तो बड़े भयानक होते हैं, सिंह होते हैं, बड़ी बड़ी आँखें होती है, उसको देख के बड़े बड़े लोगों के क्या कहें, बहुत कुछ होता है देखने के बाद। हाँ, मलमूत्र निकल जाता है, बड़े बड़े खूंखार क्रूर लोगों के, तो ऐसे कैसे आ गया? मतलब तो यमदूतों को ना एक सिद्धि होती है, उनका भयंकर रूप तो होता है लेकिन वो चाहे तो रूप धारण कर सकते हैं, और आप मुझे पहचाने इसलिए मैंने वही शरीर धारण कर दिया, रूप शरीर वो नहीं था लेकिन रूप धारण कर दिया कि आप मुझे पहचाने, अब मैं अपने रूप चेंज करके वहाँ जाने वाला हूँ पिकअप करने के लिए। ये सच्ची कहानी है, ये कहानी पाड़ी बाबा ने एक तीसरे व्यक्ति के रूप में सुना, इनका डिस्कशन, पाड़ी बाबा सहयात्री थे, बाजू बैठे थे ना, उन्होंने सुना कहानी और आके फिर सारे अपने अनुयायियों को, भक्तों को, परिचित लोगों को, सबको बताया, और ये बात शास्त्र में भी लिखी हुई है, नरक से बचना है तो एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। और एकादशी का व्रत जो है वो जितने भी व्रत बताए गए हैं शास्त्र में कि भाई 16 सोमवार करेंगे तो ये होगा, 16 शुक्रवार करेंगे तो ये होगा, मंगलवार का करेंगे तो ये होगा, ऐसे 50 चीज़ें हमारे लिखी गई है। वो 5:12 पर आपको वट वृक्ष को 13 प्रदक्षिणा करनी है, और 5 पन्ने वाले पेड़ को, मतलब 5 पन्ने वाली माला को पहनना है, ऐसा बहुत सारे नियम होते हैं। वो सारे नियम जो होते हैं ना वो टाइम बाउंड होते हैं, परमानेंट नहीं होते। देखो आप, कोई भी व्रत हमारा कैसा होता है, 9 दिन का होता है या 16 शुक्रवार का होता है या 16 सोमवार का होता है, ऐसे एक फिक्स होता है, और हर एक के पीछे एक टैग लगा होता है, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, कर्मकांड कहते हैं उसको। ये सारे व्रत आप इकट्ठा करेंगे ना, जितने भी व्रत आपको पता है, और एक बाजू रखेंगे और एक बाजू एकादशी रखेंगे, तो एकादशी ज़्यादा पावरफुल है। जितने इन सारे व्रतों को करने में शक्ति नहीं है उतने एकादशी व्रत में, लेकिन एकादशी व्रत परमानेंट है, वो 21 एकादशी 12 एकादशी ऐसा नहीं, जब तक जीवन है तब तक 1 महीने में 2 एकादशी करना है। और टोटल एकादशी कितनी होती है? 24 है ना, 2×12=24, और अधिक मास के 2, टोटल 26 एकादशी होती। और एक बार गोपियों ने राधा रानी को पूछा, बताया, मतलब प्रश्न पूछा कि आप इतना कृष्ण को वश में कैसे रखते हो, क्या करते हो आप? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता, ये 2 ग्रंथों में इसका पूरा स्टोरी आया है डिटेल में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत डिटेल में है, तो 26 एकादशी का नाम लेकर 26 एकादशी कैसे करनी चाहिए इसका पूरा वर्णन राधा रानी ने स्वयं गोपियों को सुनाया है। कहते मैं एकादशी व्रत करती हूँ इसलिए कृष्ण मेरे वश में रहते हैं, तो सभी गोपियों ने भी एकादशी व्रत आरंभ किया। तो जो जो एकादशी हम पालन करते हैं वो सभी एकादशियों का डिटेल वर्णन राधा रानी ने स्वयं गोपियों को बताया है। इसलिए वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत करना बहुत ज़रूरी है, और आप डरना नहीं, अगर आपको मुश्किल होता है तो आप वो एकादशी पदार्थ खा सकते हैं, जैसे कुटुक के आटे की रोटी होती है, आलू की सब्जी होती है, साबूदाने की खीर होती है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन खा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको फिर ऐसा आपके शरीर में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपको एकादशी में भूख लगना कम 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 हो जाएगा। फिर आपको एकादशी को भूख लगेगी नहीं, थोड़ी बहुत ही लगेगी, क्योंकि आपके शरीर को अभ्यास होगा। और अभ्यास कैसे होता है? संकल्प करने से होता है। आपको कुछ करना है तो शरीर बराबर उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेता है। कुछ करना है आपको, समझो आपको रात को 3 बजे तक पढ़ना है, तो ऐसा समय आ जाएगा आपको 3 बजे तो नींद ही नहीं आएगी। समझो आपको सोचना है कि 3 से 5 ही सोना है और दिन भर पढ़ाई करना है, तो आपको 3 बजे 5 बजे तक नींद आएगी और पूरा 22 घंटा आप टकाटक जगे रहेंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। मैंने फर्स्ट MBBS में ना 17 महीने कुछ पढ़ाई नहीं किया, खाली कॉलेज जाना आना, क्लास सुनना, वो सुना जो है उसके ऊपर ही एग्ज़ाम देना, किताब कभी खोला ही नहीं। और 18वां महीना प्रीलिम हो गई, उसके बाद में भी टाइम पास चल रहा है। एक दिन घूमते घूमते हॉस्टल में लाइब्रेरी में गया मैं, देखा तो पूरा मेरा क्लास, पूरे क्लास के जितने लड़के लड़के हैं इतने थप्पी लगा के पूरा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। मुझे इतना टेंशन आया, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं। तो फिर मैंने 1 महीना 3 से 5 सोया मैं खाली, 3 AM to 5 AM, और पूरे दिन 1 महीना तक पढ़ाई किया और फर्स्ट क्लास में पास हो गया। तो मतलब डर गया था मैं कि फेल हो जाऊंगा। 1 महीना निश्चय करके 2 घंटा सोया, कुछ नहीं हुआ, दुबला हो गया थोड़ा सा, लेकिन 22 घंटे में इतना झपकी भी लगा नहीं हुआ, क्योंकि शरीर है महाशय, ऐसे एक बांग्ला में कहावत है। वो शरीर का जो महाशय है वो कैसा चाहे वैसा उसको मोल्ड कर सकते हैं आप। एक और कहानी है कि आंध्र प्रदेश का एक भक्त था, वैष्णव संत, आंध्र प्रदेश का, आप आंध्र से हो तो आंध्र प्रदेश का संत था। अभी आंध्र प्रदेश ना 12 महीने गर्मी रहती है, गर्मी, ज़्यादा गर्मी और बहुत गर्मी, यही 3 सीज़न होते हैं। जैसे बॉम्बे में कैसा, पसीना, ज़्यादा पसीना और बहुत पसीना, ये 3 ही मौसम होते हैं, बाकी बीच में जो आना है वो आते जाते रहते, लेकिन ये मौसम बदलता नहीं। तो आंध्र का गर्मी वाला देश का शरीर प्राप्त किया हुआ साधु धीरे धीरे सत्संग करते 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 ऊपर ऊपर चला गया, हिमालय में पहुंच गया। हिमालय में पहुंच गया तो हिमालय में पहुंचा नहीं, बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में एक नदी है, उसका नाम है अलकनंदा। वो नदी है ना, केवल प्रवाहित है इसलिए जल है, अगर वो रुक जाएगी तो वो बर्फ बनेगी, इतनी ठंड वहाँ पर होती। हमने उसमें स्नान किया है कई बार, ठीक है। तो वो जो बद्रीनाथ की अलकनंदा नदी है उसमें वो जल में डूबकर 3 बार दिन में गायत्री करते थे। जिंदगी में हमने सबसे फास्ट गायत्री जो है ना वो अलकनंदा में की है, फास्टेस्ट स्पीड गायत्री। हाँ, और जब उसमें से बाहर निकलते हैं तो शरीर पूरी लकड़ी बन जाती है, फिर आप कौन से शरीर में टॉवल कहाँ लगा रहे हो समझ में नहीं आता है। इतना सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो ये कहानी क्यों बताई कि आंध्र प्रदेश का शरीर भी संकल्प से बद्रीनाथ के अलकनंदा में दिन में 3 बार गायत्री करने लायक हो सकता है, क्योंकि आपको भगवान ने मन दिया है और आपका मन विकसित है, इसलिए आपको मनुष्य या मानव ये पदवी दी गई ना। मानव किसको कहते हैं? जिसका मन विकसित है, जिसको मन में शक्ति है। कौन सी शक्ति? संकल्प करने की शक्ति। जानवर है ना, संकल्प नहीं कर सकता है, हाथी हो या चींटी हो, वो निचली योनि का होने की वजह से, मानवेतर योनि की होने की वजह से वो संकल्प नहीं कर सकता, वो खाली इम्पल्सिव बिहेवियर कर सकता है। कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्स दे सकता है, डंडा उठाया तो भाग सकता है, भूख लगेगी तो मुँह डालेगा केले के ठेले पे, फिर डंडा खाएगा तो पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, लेकिन उसको संकल्प नहीं है कि इसने मुझे डंडा मारा इसके पास कभी भी केला खाने नहीं जाऊँगा। ये संकल्प खाली मनुष्य कर सकता है। तो वो संकल्प शक्ति का उपयोग करके मनुष्य अपने शरीर को कैसे भी बदल सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है। एवरेस्ट की सर्दी में भी पहुंचा सकता है आपको, संकल्प होना चाहिए। तो वो संकल्प हमें मनुष्य जीवन में वैष्णवों को एकादशी व्रत में करना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के परम परम लाभ है। एकादशी व्रत करने से डायरेक्ट भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर कृपा करते हैं। लेकिन वो 24 आवर्स का व्रत होता है, दशमी के दिन शुरू करेंगे तो द्वादश के दिन छोड़ेंगे, बीच में आपको पूरा 24 आवर्स व्रत करना है। बाकी शिवरात्रि का व्रत शाम को छोड़ने पड़ते हैं, गणपति का व्रत शाम को चंद्र को देख के छोड़ते हैं, और पार्वती का व्रत भी शाम को छोड़ते हैं, और कुछ कुछ व्रत दोपहर तक ही होते हैं। लेकिन एकादशी व्रत कोई भी नाम का व्रत हो, तो तीन एकादशी महान बताई गई है, एक आषाढ़ी एकादशी, एक कार्तिक एकादशी और एक पांडवा निर्जला एकादशी। ये तीन एकादशी को सब महान होते हुए भी सबसे अधिक मान्यता है, और वो तीन व्रत करने से भी आपको उसका लाभ होता है। और भी एक बात बताता हूँ जो आपको फॉलो नहीं करना है, खाली सुनना है। यस और नो? 26 एकादशी का नाम पढ़ेंगे ना, केवल नाम खाली पढ़ेंगे सर मुँह से, तो 26 एकादशी करने का लाभ मिलता है। लेकिन आपको करना है, खाली नाम नहीं पढ़ना है। एकादशी के महिमा में लिखा है, मंत्र है पूरा, 26 नाम है उसके अंदर, आगे लिखा है ये नाम जपने से भी 26 एकादशी करने का लाभ होता है। तो ये बात गुप्त रखना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत चालू लोग होते हैं, बोला ठीक है अभी पर मुझे पंडरपुर में बैठ के कथा में बताया, फिर क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं कुछ, ठीक है। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, एकादशी में जो अन्न ग्रहण करता है वो श्वान विष्ठा समान होता है, यानी कुत्ते के मल के समान होता है। और एकादशी में जो अन्न ग्रहण करता है वो सीधे यमदूत के हवाले हो जाता है, और उसको जन्म कौन सा मिलता है, सुनना है आपको, मनुष्य होकर अगर एकादशी व्रत नहीं करता है तो उसको सुअर का जन्म प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। एकादशी के दिन जो जुगार खेलता है, यानी जुआ खेलता है, खुंटी हाणी गुदास्तानी, यमदूत उसके एनस में किला ठोकते हैं, ये तुकाराम महाराज का कहना है। इतना एकादशी का महत्व है। और कल ही हमने सोचा कि कल के दिन ही बकरा ईद थी, आप सोचो, सोच के हैरान हो गया, कैसे कई बार होता है हमारी बड़ी एकादशी और इनको कोई ना कोई दिन इनका आ जाता है जिसमें एक दिन बकरा गाय सब काट के खाते हैं, कहाँ पहुँचते होंगे ये लोग, ये सोचो आप। इसलिए हिंदू धर्म में जन्म प्राप्त करना भी बड़े भाग्य की बात है, कि हम हिंदू इसलिए गर्व नहीं हमको उसका, शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो जन्म जन्मांतर में पाप करते हैं वैसे जन्म प्राप्त करते हैं। जन्म से ही कोई नियम नहीं है, खाने पीने का नियम नहीं, रहने का नियम नहीं, शादी का नियम नहीं, कुछ भी नहीं, कुत्ता बिल्ले जैसा रहो और ज़िंदगी बिताओ। फिर यमदूत खड़े ही हैं आपका स्वागत करने के लिए, आपको चक्र में घुमाने के लिए रेडी है वो। लेकिन जो हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी उनकी तरह जीता है उनका क्या कहना, उनके बारे में क्या कहें। जो ब्राह्मण होकर भी शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हाँ, वो कितना दुर्भाग्य जीवन है। और हम लोगों को सत्संग प्राप्त हुआ है, संतों का संग, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, उसके अंदर भी दुर्लभ एक वस्तु है, वो कौन सी है, संतों का संग। क्योंकि मानव तो बहुत सारे हैं, संतों का संग कितने लोग कर रहे हैं, या कितने लोग को प्राप्त है पहले बताओ। प्राप्त होगा तो आपको समझेगा ये अच्छा है, ये करना चाहिए, लेकिन प्राप्ति नहीं हुआ तो वो लक बाय चांस फिर क्या करेंगे। इसलिए जिन लोगों को हमने तो कोई तपस्या नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको ओपनली, कोई तप नहीं किया हमने, गुरु पाने के लिए और भक्ति पाने के लिए, मंदिर पाने के लिए कोई तप नहीं किया, वो तो कृपा है हमारे ऊपर पूरी, ऐसे ही रेडीमेड लॉलीपॉप है हमारे लिए। लेकिन तो रेडीमेड लॉलीपॉप मिलने के बाद में हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो समझना हमको ज़रूरी है। कितने लोग सत्संग प्राप्त होने के बाद भी उसको छोड़ के जो मर्जी है वो करते रहते हैं। भगवान किसी भी व्यक्ति को सत्संग दिलाने में कंजूसी नहीं करते, हर मनुष्य को मनुष्य जन्म देने के बाद भगवान सत्संग की योजना करते ही है बाय डिफॉल्ट। इफ़ यू आर ह्यूमन बीइंग, आपको संतों के पास होना ही है, मतलब वी हैव टू पास बाय संत, सेंटली पीपल। फिर कोई उस घटना का लाभ लेके आध्यात्मिक उन्नति करता है या कोई उसको बोलता है ठीक है यार कोई बात नहीं। जैसे भक्ति वेदांत में, भक्ति वेदांत अस्पताल में आए चौथे दिन कोई साधु आता है, कोई इंद्रधनु स्वामी आते हैं, कोई जयदत्त स्वामी आते हैं, कोई जयपताका स्वामी आते हैं, कोई ना कोई आते रहता है। और रिसेप्शन में सब स्टाफ उनको देखते हैं, कितने सब स्टाफ है हमारे, हर रिसेप्शन में खड़े हैं। वो कहीं ना कहीं जाके बिल बनाते हैं, वो कोई एक्सरे करते हैं, कोई सोनोग्राफी करते हैं, कोई सिटी स्कैन करते हैं, सब जगह उनको दर्शन होता है। लेकिन जो प्रॉपर भक्त बने हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और बाकी लोग खाली पेपर बना के छोड़ देते हैं। तो सबको भगवान ने लाभ दिया ना संतों का, लेकिन उसका लाभ सब लोग नहीं उठाते। हम लोगों को उनमें से नहीं होना चाहिए जिनको प्राप्त होने पर भी वो ड्राई है, सूखे हैं। एक बार जिनको प्राप्त हुआ है उसके बाद उनको पीछे लगना चाहिए कि मुझे चाहिए। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जिसको सुनने की आदत नहीं ना वो आगे प्रगति नहीं कर सकते लाइफ में। श्रवण करना ये नम्रता का लक्षण है। देखो आप बैठे यहाँ पर, श्रवण करना, यहाँ बैठे आप सुन रहे हैं, आपकी नम्रता का लक्षण है। नहीं तो आप कह जाते कौन किसको सुनना है, जाओ उधर काम, कुछ काम करने का बहाना करो, जाओ बड़ा खाओ, उधर खाना खाओ। लेकिन एक जगह बैठकर भगवान की बातें सुनना ये भी नम्रता का लक्षण है। और जब सुनकर आपको घंटों घंटों सुनने की आदत लगती है आप बड़े भाग्यवान हो। नहीं तो कलयुग में ना सुनने की मालूम है कितनी कैपेसिटी है, 20 मिनट मैक्सिमम, प्रयत्नपूर्वक 20 मिनट की कैपेसिटी होती है। उसके बाद में सबका ध्यान भ्रष्ट हो जाता है, इधर उधर मोबाइल देखेगा, घड़ी देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। एक भक्त ही हाँ शरीर और महाशय का प्लानिंग संकल्प करके 6-6 घंटे भी बैठ के सुन सकता है, उसको अभ्यास की ज़रूरत है। और हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज ने हमको राधा गोपीनाथ मंदिर में ही अभ्यास लगाया है। 6-6 घंटे उपवास के दिन, कोई खाना पीना तो है नहीं, ब्रेकफास्ट लंच का ब्रेक तो है नहीं, दिन भर भी कुछ खाना नहीं है। तो महाराज सुबह 9 बजे शुरू करते थे, कभी 3, 3:30, 4 बजे तक बोलते जा रहे हैं, सब लोग बैठ के सुनते जा रहे हैं, और कुछ काम तो नहीं है तो श्रवण में लगे रहते हैं। लेकिन बाहर के मंदिर के कोई भक्त आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, भाई क्या चल क्या रहा है, रोड सपनी कब समाप्त होगा ये कथा। और हमारे मंदिर के भक्त लोग कहते हैं महाराज आनी और बोलो, क्योंकि उनका अभ्यास हो गया है, वो अमृत प्राण करने की उनको आदत हो गई है, वो पीते जाए तो प्यास बुझती नहीं उनकी। ऐसे थे हमारे सुखदेव जी और ऐसे हमारे परीक्षित महाराज थे। रिकॉर्ड ब्रेक है उनका, कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में या किधर भी किसी ब्रह्मांड में, ऐसे चैंपियन नहीं हो सकता है। कितने घंटे सुना कथा पता है आपको? 168 आवर्स विथ नो टी ब्रेक, नो लंच ब्रेक, नो डिनर ब्रेक, नो स्लीप ब्रेक, नो लघुशंका ब्रेक, नथिंग। और ऐसे नहीं हुई 2 दिन हो गए तो भाई 4 दिन बाकी, हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। अरे परीक्षित जगे हो ना? हाँ महाराज मैं जग रहा हूँ, आप बोलो मैं सुन रहा हूँ, मैं महाराज सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं ना उतने प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। और सुखदेव को आश्चर्य हो रहा है, सुखदेव मुनि जी को, अरे तू 3.5 दिन बाद में भी प्रश्न पूछ रहे हो, 5 दिन बाद भी प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि कृष्ण कथा शुरू हुई ना 3.5 दिन के बाद, तो उसके बाद भी पुस्तक प्रश्न कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हुआ, अरे उसका आत्मा उस शरीर में कैसे प्रवेश किया, ये तो बड़ा पापी था। तो पहले तो सुखदेव जी परीक्षित का अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप मुझे अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और आपका प्रश्न पूछने का उत्साह देख के मुझे कहने का उत्साह आ रहा है, इनको देख के इसका उत्साह बढ़ रहा है, इनको देख के उनका उत्साह बढ़ रहा है। कहने वाला नहीं थक रहा है तो सुनने वाला का उत्साह बढ़ रहा है, सुनने वाला नहीं थक रहा है इसलिए कहने वाले का उत्साह बढ़ रहा है। देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, 168 आवर। फिर 7 दिन का लिमिट था इसलिए वो रुक गए, नहीं तो फिर वो आवर चलता था उनका। अगर वो लड़के ने बोला होता 70 दिन के बाद तुम्हें सर्प पक्षी काटेगा तो 70 दिन भी ये कथा सुनते। 1680 आवर्स क्षमता है ना, वो संकल्प है उनका, वही करना है उनको। खाना पीना तो है नहीं और नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जिनको भगवान की भक्ति के कथा में रुचि है उनको भगवान की कथा सुनने पर नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है। हमें नींद आने लगती है कथा में बैठते ही, मन शांत होता है तो पुराना पेंडिंग स्लीप आगे आ जाता है, पूरा सोना आरंभ हो जाता है। अच्छा है ये, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए है ना, क्योंकि भगवान की कथा चल रही है। तो कुछ लोग ना उपवास के दिन या नवरात्रि के दिन नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, रात को जुआ खेलते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। खुंटी हाणी गुदास्तानी रिबोल, सूल्हे पर चढ़ने की जरूरत नहीं, वो सूल्हे लगा देंगे बराबर से, है ना। तो अभी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और बहुत सारे वैष्णव पंडरपुर में आए हैं। फिर राधा कुंड धाम का एक धाम है वृंदावन में, गोवर्धन में, उधर भी विश्व के जितने संत हैं सब आए हुए हैं, कोई नहीं आया ऐसा नहीं है। जो भी संत है प्रसिद्ध है वो सब राधा कुंड के किनारे आए हैं और कुछ समय क्यों ना हो वहाँ भजन किया है। जैसे पंडरपुर में भी सभी प्रकार के संत आए, सभी संप्रदाय के संत आए। सबसे पहले बताएंगे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो पहले आए थे। नित्यानंद प्रभु कैसे आए, ये एक संत थे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, इनका नाम है लक्ष्मीपति तीर्थ। बड़े कैसे कहूँ आपको, राधा रानी के तत्व को प्रकाशित करने वाले जो पहले संत थे माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु थे वो। इतने महान बड़े बड़े प्रसिद्ध संत उनके शिष्य थे। तो वो पंडरपुर में आते हैं, एक ब्राह्मण के घर पर रहते हैं, उसकी माधुकरी ग्रहण कर रहे हैं। तो घर पे माधुकरी आकर ग्रहण करते हैं और प्रसाद लेते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं कि तुम्हारे घर पे मुझे बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है, दिव्य अनुभव हो रहा है, तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है इस गांव में या शहर में पता नहीं, मुझे बहुत दिव्य अनुभूति हो रही है। और उन्हें ये कहते कहते ग्लानी आ जाती है, भाव विभोरों का मूर्छा आती है, तो मूर्छा में उनको नींद लगती है। तो नींद में उनको बलराम आते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, बहुत सुंदर उनका स्वरूप, हाँ चैत्र के मेघ की तरह चमकदार सफ़ेद, बड़ी बड़ी आँखें, बलवान शरीर, मजबूत दंड, छाती, सीना बहुत चौड़ा और बलवान, अति बलशाली पर सुंदर बलराम जी का दर्शन हुआ। तो स्वप्न में दर्शन किया, उनका चरणों को स्पर्श किया और कहा कि कल तुम्हारे पास एक अवधूत ब्राह्मण आएगा, बटू मतलब बटू नहीं ब्राह्मण आएगा अवधूत, उसको दीक्षा देना, शिष्य बना देना उसको, और ये मंत्र बताता हूँ कान में आपके, वो उसको देना दीक्षा में। और बलराम जी ने उनके कान में वो मंत्र दिया जो उनको देना है अगले दिन एक अवधूत ब्राह्मण को। और फिर सुबह वो उनको जब नींद खुलती है तो वही मंत्र उनके कान में गुज रहा है जो उनको देना है। और सवेरे वो अपना अनेक जैसे ही समाप्त करते हैं, अनेक मतलब स्नान संध्या आदि जो कर्म होते हैं ना, हम लोग स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, अपना साधना करते हैं, वो समाप्त होते ही उनके दरवाजे पे भली सुबह पर एक सुंदर बालक आया नीली धोती पहनकर, बहुत ही सुंदर, और बालों का जो सब विद्यार्थी कैसे बनाते ना, मुछरा बनाते ना ऐसे बनाया हुआ, कमल जैसी आँखें, सुंदर शरीर, तेजस्वी। वो देख के ही लक्ष्मीपति शरीर के शरीर में कंप होने लगा और वो बालक ने आते ही दंडवत प्रणाम किया और कहते गुरु जी मैं नित्यानंद हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो तुरंत उनको याद आया स्वप्न में कि हाँ उन्होंने कहा था, तो उन्होंने उनको बिठाया और दाहिने कान में वो मंत्र दिया और उनको दीक्षा के रूप में स्वीकार किया। और दीक्षा लेके तुरंत उन्होंने दंडवत किया और वो चले गए। लेकिन वो बालक को दीक्षा देने का जो दर्शन होने से दंडवत दीक्षा जितना भी समय उनके साथ बिताया, उस समय इतनी कालावधि में लक्ष्मीपति तीर्थ उस बालक से इतना आसक्त हो गए कि जैसे वो गया तो उसको रोना आना शुरू कर दिया उसके विरह में, और रोने लगे वो, और फिर उनको नींद आ गई। फिर स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, पहले बलराम आए थे ना, नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं बलराम जी। अभी नित्यानंद प्रभु को दर्शन दिया और कहा कि मैंने आज आप सुबह से आपसे मंत्र लेकर दीक्षा ली, और तुरंत अपना रूप चेंज करके बलराम का रूप दिखा दिया। इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने समझाया कि बलराम भी मैं हूँ और नित्यानंद भी मैं हूँ और आपसे दीक्षा लेने के लिए आया था। तो ये देखकर स्वप्न में भाव विभोर होकर गिर गए, वो बेहोश हो गए। जब जग गए तो बलराम जी और चेंज होने वाले नित्यानंद जी ने कहा ये रहस्य किसको बताना नहीं, ये गुप्त रखना, और नित्यानंद जी अंतर्धान हो गए। उसके बाद कुछ दिन वो ब्राह्मण के पास इधर पंडरपुर में रहे, लेकिन रोते रहे और रोते ही रहे, और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया नित्यानंद प्रभु के विरह में। और आगे जाकर नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं और माधवेंद्रपुरी को शिक्षा गुरु के रूप में लेते हैं और माधवेंद्रपुरी फिर ईश्वरपुरी को दीक्षा देते हैं। ऐसे आगे बहुत लंबी कहानी है। तो ये हुआ नित्यानंद प्रभु का पंढरपुर का लीला। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं। अभी तक वो नित्यानंद प्रभु से मिले नहीं हैं। 24 साल वो नवद्वीप में रहे अपने माता पिता के पास, बाल्यपन गुजारा, फिर विवाह किया, दो पत्नियां हो गई, फिर संन्यास 24 साल में लेते हैं वो। और फिर जो भ्रमण करने को निकलते हैं मध्य लीला, और उसके बाद में जब लौट के आते हैं तो नित्यानंद प्रभु को उनकी मुलाकात होती है। तो इसके पहले जब वो उनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप, वो इतने सुंदर थे, इतने सद्गुणी थे और इतने विरक्त थे बचपन से ही, जन्म से ही उनको समझने लगा तब से भागवत में रुचि, अद्वैत आचार्य से दिन रात भागवत सुनते थे वो। उनको भागवत सुनने में खाने पीने के भी होश रहते नहीं थे। ये लिटिल लिटिल निमाई जो थे ना, बागे चैतन्य महाप्रभु बने, निमाई पंडित जो है ना, उनको बुलाने को मैया भेजती थी, जाओ बड़े भैया को बुला के ले गया, तब जाके ये भोजन करने आते थे। तुरंत बास में भी भागते थे सुनने के लिए, रात तक सुनते थे। तो क्या हुआ, इनकी भागवत की रुचि देखकर माता पिता को चिंता होने लगी। क्या लगता है माता पिता को, जब बालक तुलसी माला की कंठी पहनता है, जब बालक चाय कॉफी छोड़ता है, जब बालक लहसुन प्याज छोड़ता है, वो भजन करता है, दिन भर भागवत सुनता है, संतों में रहता है, ब्रह्मचारियों में रहता है, संन्यासों में रहता है, तो माता पिता को टेंशन क्या आता है, ये जाएगा भाग के, छोड़ के जाएगा। मेरी शादी होने के पहले मेरे इन लॉज को ही लगता था कि एंगेजमेंट तो कर दिया, शादी करेगा कि नहीं पता नहीं। अभी खबर आई कि चाय कॉफी भी छोड़ दिया है, अभी खबर आई कि कंठी माला पहन लिया है। वो कंठी माला कब पहनते हैं, जब व्यक्ति विवाह करके बच्चों को बड़ा करके वो एकदम विरक्त हो जाता है, तभी एंड में वानप्रस्थ में वो तो तुलसी माला पहनते हैं। तो शादी के पहले ही पहन के बैठा है, मतलब क्या करेगा। तो वैसे ही सच्ची माता को बहुत चिंता हुई कि मेरा बालक जो है निश्चित रूप से संन्यास लेके भाग जाएगा, उसका विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने विवाह की बात चालू कर दी, लड़की दिखना वगैरह। जैसे ही विश्वरूप के कान पर यह बात आई कि मेरे माता पिता मेरे लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, उसी दिन जो उन्होंने घर छोड़ा, पता ही नहीं चला कब गए, कब पता चला और कब छोड़ के गए, एक क्षण भी रुके नहीं। वो बहुत बाल्यावस्था में गए, मेरे ख्याल से 8 साल की आयु में गए, और जाते ही तुरंत इतनी छोटी आयु में संन्यास ले लिया उन्होंने। उनका नाम पड़ा शंकरारण्य स्वामी, शंकरारण्य। और संन्यास लेकर कहते 20 साल तक भारत भर भ्रमण किया उन्होंने, और फिर वो पंढरपुर आए। अभी इसके आगे की कथा मैं बाद में बताता हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपने भैया की खोज में वो बहाना करके निकले कि मेरा भैया कहाँ गया, उसको ढूंढना है। तो पूरा 6 साल जो है ना मध्य लीला का, 24 साल के बाद की 6 लीला, 6 साल की लीला जो है, उसमें महाप्रभु दक्षिण भारत में पूरा चक्र लगाया उन्होंने, पूरा एक पूरा रूट है उनका पूरा, उसमें तिरुपति, मदुरई, श्रीरंगम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, फिर ऊपर जाकर नासिक, कोल्हापुर, पूरा करके उन्होंने फिर पूरा जो चक्र है ना महाप्रभु चैतन्य का, वो एंड हो गया पंढरपुर में, जैसे कि ऑलमोस्ट लास्ट स्टॉप है उनका। तो वो आए पंढरपुर में, तो एक ब्राह्मण के घर में रुके, वहाँ पे भोजन किया, आराम किया। तो ब्राह्मण ने बताया कि रंगपुरी जी महाराज पंढरपुर में आए हुए हैं। जैसे हम लोग जब आते हैं ना, तो हमारे फ्रेंड लोगों को बताते हैं ये महाराज जी भी आए हैं, वो महाराज जी आए हैं। अगर कोई फिल्मी चाहता आ गया तो उसको लोग क्या बताएंगे, अभी मिथुन चक्रवर्ती आया है, अभी वो शाहरुख खान आया हुआ है, अभी वो आया हुआ है। जैसे आपकी रुचि है ना, वैसे खबरें आपको मिलती जाएगी। अगर आप पॉलिटिशियन होंगे तो आपको पॉलिटिक्स की खबर, ये नेता आया हुआ है, वो नेता आया है, वो मंत्री संतरी आया हुआ है, आपको पता चले। अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो आपको यही खबर मिलेगी, कौन से महाराज आए हुए हैं। तो ये तो भक्त हैं सब लोग, महाप्रभु चैतन्य भी भक्त के रूप में, ब्राह्मण भी भक्त हैं। तो उनको ब्राह्मण आते ही बताता है कि गाँव में अभी पंढरपुर में रंगपुरी जी महाराज आए हैं। रंगपुरी जी महाराज कौन है, वो जो लक्ष्मीपति आए थे ना उनके शिष्य है ये, माधवेंद्रपुरी जी, रंगपुरी जी। तो महाप्रभु जी तुरंत भोजन करके हाथ धो के तुरंत भागते हैं उस घर में और साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं रंगपुरी जी को। रंगपुरी जी इस युवा अवस्था के सन्यासी का सौंदर्य देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो देखते रह जाते हैं, कमल जैसी आंखें, स्वर्ण जैसी कांति, वो सन्यास वस्त्र धारण किया हुआ है, सर मुंडवाया हुआ है इतने, लेकिन इतना सौंदर्य है कि उनको उसमें वात्सल्य भावना निर्माण होती है। एक थे हमारे बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य, बड़े बुजुर्ग थे वो, जब महाप्रभु को देखा तो उनको वात्सल्य निर्माण हुआ, अरे 24 साल का सन्यासी इतना सौंदर्यवान है, कैसे अपने सन्यास को टिका पाएगा ये, मैं उसको वेदांत का ज्ञान देता हूँ फिर भी विरक्त हो जाएगा, फिर अपने ब्रह्म सन्यास को टिकाना उसके लिए आसान हो जाएगा। वैसे इनको भी ऐसा एक वात्सल्य आया और वो बैठकर उन्होंने बहुत भारी बातें की, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन किया, डिस्कस किया। और फिर पूछते बेटा तुम कहाँ से हो, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं नवद्वीप से हूँ। नवद्वीप कहती उनकी पुरानी यादें ताज़ा होती है, वो कहते मैं भी मेरी युवा अवस्था में मेरे गुरु जी के साथ, लक्ष्मीपति जी के साथ मैं नवद्वीप गया था। वहाँ पर मैं एक बहुत सुंदर अच्छे ब्राह्मण के घर में गया, उसका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, उसकी पत्नी का नाम तो सची माता, वैसी माता थी जैसे जगन माता हो, सबके लिए माता का भाव उसके मन में था, सब लोग उसको देखकर माता का ही अनुभव करते थे, कितनी भी उम्र की हो उनको लगता था कि हमारी माता है, और वो सबके लिए बड़े प्रेम से भोजन बनाती थी जो भी उनके घर में आता था। मुझे अभी भी याद है वो सुरंगपुरी जी चैतन्य महाप्रभु बता रहे, मुझे अभी भी याद है सची माता ने मेरे लिए केले के फूल की सब्जी बनाई थी। वो केले के फूल की सब्जी बांग्ला में बहुत प्रसिद्ध है, हमारे साउथ में भी बहुत प्रसिद्ध है, बांग्ला में भी बहुत प्रसिद्ध है केले के फूल की सब्जी। महाप्रभु चैतन्य को बड़ी पसंद थी वो, तो सची माता ने जो बनाई थी कहते उसका स्वाद मेरे आज पर मेरी जीवा पर है, इतना दिव्य स्वाद था उसके अंदर। और ये सब वर्णन किया, उसके हाथ में कितनी जादू थी, प्रसाद में कितना स्वाद था, घर में कितनी भक्ति थी, जगन्नाथ मिश्रा कितने बड़े भक्त थे, ये सब वर्णन किया। कहते हैं पास बैठे आपकी, आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ उनके घर के बारे में। उनके घर में एक और बेटा था, उसका नाम था विश्वरूप, वो बहुत सुंदर था, बहुत भागवत में रुचि थी उसको, लेकिन माता पिता ने जैसे ही विवाह का योजना शुरू किया तो भाग गया, उसने शंकरारण्य नाम से संन्यास ग्रहण किया। और फिर वो पूरी तरह 20 साल घूमते घूमते 21 साल पंढरपुर आया और यहाँ पर उसने समाधि ग्रहण की। तो महाप्रभु कहते हैं वो मेरे ही माता पिता हैं, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, और ये विश्वरूप जो आप कह रहे हैं मेरे ही भाई है। और रंगपुरी के माध्यम से उनको पता चला कि उनका नाम शंकरारण्य गोस्वामी हुआ था और वो पूरे भारत भर घूम के तीर्थस्थल करके जगन्नाथ पंढरपुर में आके उन्होंने यही समाधि ले लिया। तो महाप्रभु जी चरणों में गिरते हैं, उनके बहुत आंसू बहाते हैं। बाह्य दृष्टि से उनकी योजना थी कि भाई को ढूंढे, आंतरिक उद्देश्य था उस बहाने सभी लोगों को हरिनाम संकीर्तन बांटे, वितरण करे सब लोगों को, हरिनाम में सबको प्रेम भक्ति से पागल बना दे, दोनों उद्देश्य सफल किए। फिर वो गए, उन्होंने महाप्रभु चैतन्य ने उनका समाधि स्थल ढूंढ के निकाला, वहाँ पर उनके चरणों की पादुकाओं को स्थापन किया, वहाँ पूजन किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो स्थान लुप्त है, किसी को पता नहीं है किधर है, लेकिन रिसर्च करने से मिलेगा एक ना एक दिन। वो पंढरपुर का वैशिष्ट है क्योंकि वहाँ पर विश्वरूप के चरणों का पादुका का स्थान है पंढरपुर में। इस प्रकार से 11 दिन चैतन्य महाप्रभु उसके बाद पंढरपुर में रहे और हरिनाम संकीर्तन किया, फिर उसके बाद वो यहाँ से चले गए, तो उत्तर दिशा में चले गए, वहाँ से वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए। ये हुआ चैतन्य महाप्रभु के यहाँ का आगमन का लीला। 11 दिन में उन्होंने क्या किया, विट्ठल के मंदिर के गर्भगृह में जो जगह है ना, देखो गोल जगह, हम लोग अराउंड लाइन लगा के ऐसे आते हैं ऐसे बाहर निकलते हैं, तो ऐसे आके बाहर निकलते हैं, बीच में खाली जगह है, तो बहुत छोटी जगह है लेकिन उस समय जमा जगह बड़ी होगी शायद, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिन भर धूमधाम से कीर्तन करते थे। उनका कीर्तन देखकर पंढरपुर के निवासी बहुत भाव विभोर हो जाते थे, दिन भर कीर्तन करते थे और रात भर फिर घर पे आकर कथा करते थे। ऐसे उन्होंने 11 दिन बिताए और पंढरपुर वासियों को कृष्ण प्रेम देकर चले गए। जब आए तो ऐसे कहा कि सबसे पहले उन्होंने चंद्रभागा में स्नान किया, चंद्रभागा में स्नान करने वाली स्वर्णमयी सन्यासी को देखकर सभी औरतें पुरुष सब प्रभावित हो गए, स्नान करके चंद्रभागा का गुणगान करते हुए नृत्य करते हुए वो विठल जी के मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने धूमधाम से कीर्तन किया और आगे भी 11 दिन तक करते रहे। उसके बाद पे यहाँ पर वल्लभाचार्य जी आए। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, तो वल्लभाचार्य जब आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आते ही हमारा जो इस्कॉन का मंदिर है ना, चंद्रभागा के उस तरफ है ना, वो जिस तरफ है उसके बाजू में वल्लभाचार्य जी का आश्रम है। तो तभी आश्रम नहीं था, बाद में बना, लेकिन वहाँ पर यानी चंद्रभागा के उस तरफ उन्होंने, उनको आते ही ऐसा ध्यान लगा कि 3 दिन ध्यान में ही रहे। उनके साथ बहुत शिष्य मंडली थी और वो सब लोग सोचते हैं कि कभी नदी पार करेंगे, कभी विट्ठल का दर्शन करेंगे, सबको होता ना उत्सुकता। पंडरपुर में आए, 3 दिन हो गए, अभी तक नदी भी पार, स्नान भी नहीं किया, पार भी नहीं, महाराज जी हमारे ध्यान में बैठे हुए हैं। 3 दिन के बाद थोड़ा ध्यान खुला तो उन्होंने पूछा, महाराज जी कब जाना है, चंद्रभागा पार करके विट्ठल जी को दर्शन करने कब जाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, अरे आवाज नहीं आ रहा है कुछ, हरे राम 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 हरे, एक बार और बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वल्लभाचार्य ने कहा, जाओ जाओ नाव की व्यवस्था करो, अब जाते हैं हम लोग। तो ये नाव की व्यवस्था करने के लिए नदी के पास गए ही नहीं, तब तक उन्होंने देखा एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति हाथ में दंड लेकर पानी से ऊपर के चल के आ रहा है इस किनारे में, पानी के ऊपर चल के आ रहा है दंड लेकर हाथ में। तो ये भागे महाराज को, महाराज महाराज ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है। तो वल्लभाचार्य समझ गए, वो भाग के किनारे में आए, देखा तो स्वयं विट्ठल जो है वो वल्लभाचार्य को मिलने के लिए नदी के ऊपर से चल के आ रहे हैं। दंडवत प्रणाम किया, नदी किनारे उनका मिलन हुआ, बार बार दंडवत किया, शिष्यों को बताया ये स्वयं भगवान विट्ठल है, सब दंडवत किया उन्होंने। और वल्लभाचार्य जी का विट्ठल जी का लंबा संवाद हुआ, हरे कृष्णा। महेश जी सुन रहे ना? तो फिर बड़े लंबे संवाद के बाद में वल्लभाचार्य को विट्ठल भगवान ने बताया, क्या बताया ध्यान से सुनना। वो कहते हैं, भविष्य में देख रहा हूँ तुम्हारा संप्रदाय टूटने वाला है, इसलिए बेहतर यह है कि आप विवाह करो। और विवाह करके वो कहते हैं ना उसको वंश संप्रदाय बनाओ, यानी पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र वो संप्रदाय बनाओ, तो वो टिका रहेगा। अगर शिष्य शिष्य करते रहोगे तो वो टूट जाएगा। कोई शिष्य कोई पुत्र नहीं होता है ना, तो उसका शिष्य कोई उसका पुत्र नहीं होता है, तो ऐसे खंड पड़ जाएगा। तो विट्ठल जी की आज्ञा से लक्ष्मी देवी नाम की कन्या के साथ वल्लभाचार्य ने विवाह किया, उनको 2 पुत्र हुए, विट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी, और इनके 4 शिष्य हुए जो अष्टछाप के रूप में जाने जाते हैं। इसमें सूरदास भी है, सूर सागर कहते हैं, सबसे सर्वोच्च शिरोमणि, ऐसे वल्लभाचार्य का इतिहास है। तो उनका मठ वहाँ पर है। उसी के आगे जाओगे तो आपको मध्वाचार्य का मठ मिलेगा, उसको कहते हैं उत्तरादि मठ, उसका नाम है। तो मध्वाचार्य जो है ना, वो 2 बार अपने गुरु से मिलने बद्रिकाश्रम व्यासदेव से मिलने गए थे। अभी हम जाते ना बद्रीनाथ में, तो वो तो व्यासदेव की गुफा है, वहाँ पर वो नीचे उतर के आए थे लिखाण करने के लिए। उनका निवास स्थान नहीं है, वो उनका ऑफिस है, बस सेवा करने आए थे वो। उनका निवास स्थान कहाँ है? बद्रिकाश्रम। वो कहाँ है? जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता है, मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकता है। व्यासदेव जी वहाँ रहते हैं और वहाँ तप करते हैं, लेकिन मध्वाचार्य हनुमान जी के अवतार थे, 2 शिष्यों को लेकर वहाँ चले गए, लेकिन 2 शिष्यों को बोला आप पीछे रहो, और वही रह गए बद्रीनाथ में और आगे जाकर गुरु से मिल के आए। दूसरी बार जब वो गए तो रास्ते में पंडरपुर में रुके, तो उस समय उनके शिष्य थे पद्मनाभ तीर्थ, उन्होंने उत्तरादि मठ की स्थापना की थी और उनकी बहुत इच्छा थी कि आप यहाँ रहो, हमारा आश्रम है यहाँ पर आप रहो। तो उत्तरादि मठ में उनको कोई चुप कराया क्या? उत्तरादि मठ में यहाँ पर हमारे राधा पंडरीनाथ मंदिर के बाजू वाले उत्तरादि मठ में मध्वाचार्य ने 4 महीने चतुर्मास में निवास किया और हर रोज विट्ठल का दर्शन किया। फिर उसके बाद में उनके बहुत सारे शिष्य यहाँ पर आए, महान शिष्य नरहरि आचार्य, नरहरि तीर्थ, वेदनिधि तीर्थ, सत्य ध्यान निधि तीर्थ, ऐसे अनेक सन्यासी उनके आकर उन्होंने यहाँ पर, आज भी उडुपी का मठ यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद में एक वल्लभाचार्य के बारे में बताना भूल गया मैं कि वल्लभाचार्य ने उसी जगह बैठकर 7 दिन भागवत कथा भी की। जहाँ जहाँ उन्होंने बैठकर भागवत कथा की उस जगह को नाम पड़ा बैठक, महाप्रभु जी की बैठक, क्योंकि वल्लभाचार्य को भी महाप्रभु कहते हैं। तो महाप्रभु जी का बैठक का जनरल भारत में अर्थ है कि वल्लभाचार्य जी की बैठक, जिन्होंने वहाँ पर भागवत सप्ताह किया है। ऐसे भारतवर्ष में वल्लभाचार्य के 84 बैठक है, 84th। एक नंदगांव के पावन सरोवर के बाजू में भी है। और वल्लभाचार्य ने भगवान विट्ठल के लिए सोने का मुकुट बनाया, जो उनको साउथ इंडिया के राजा कृष्णदेवराय, बहुत फेमस राजा है, बीजापुर के राजा कृष्णदेवराय, बहुत फेमस, उनका इतिहास ब्रिटिशों ने और मुसलमानों ने हमारे इतिहास किताब से काट दिया है पूरा। खाली जो उनका गौरव है वही बताया है, शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब, इनका इतिहास हम पढ़ते हैं। बाकी कृष्णदेवराय, विजय क्या नाम है उसका, विजयनगर, वो उसका भी इतिहास नहीं दिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य हमारा है? जिनको खुद के बारे में गर्व और अभिमान नहीं है वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप खुद को ही नीचा समझते हो, खुद का देश छोटा समझते हो, खुद की संस्कृति छोटी समझते हो, खुद के खाने पीने के जो रिवाज है उसको फालतू समझते हो, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। आज हमको खाने को अच्छा लगता है, हाँ, हमारी पत्नी और हम एक जगह गए थे उत्तरकाशी में, हिमालय के अंदर, उन्होंने बर्थडे पार्टी किया, बर्थडे पार्टी में क्या खाया होगा, मैगी, बस मैगी खाएंगे, ये हमारे बर्थडे पार्टी का बेस्ट खाना है। सोचो आप, हमारे बच्चे पार्टी में क्या खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, ये उनको लगता है कि ये बेस्ट खाना है। ये नहीं हुआ तो बच्चे लोग पार्टी में नहीं आते, केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, मफिन्स खाते हैं। 26 राज्यों का 26 प्रकार का भोजन भारत में उपलब्ध है। भारत जैसे रेसिपीज और स्वाद विश्व में कहाँ नहीं, कहीं नहीं है। फिर भी हमको क्या अच्छा लगता है, पास्ता अच्छा लगता है, पिज्ज़ा अच्छा लगता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी संस्कृति है जो हमको अच्छी लगती है। हम लोग कपड़े कौन से पहनते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, हमारे देश के कपड़े नहीं पहनते हैं। देखो गांव गांव में जाओ, पहाड़ों में जहाँ पर 3-3 महीने तक गाड़ी पहुँचती नहीं है, वहाँ पर भी लड़कियाँ जीन्स पहनकर बाल छोड़ के घूमती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये एडवांसमेंट है, ये प्रगति है, ये प्रगत होने का लक्षण है। ऐसा है, उनके माता पिता जो हैं वो अभी भी खेत में उगी हुई सब्जी खाते हैं, और वहीं की रोटी, वहीं का गेहूँ, वहीं की सब्जी खाते हैं। और बच्चे लोग सब लोग क्या कहते हैं उसको, फ्राई अम्स और क्या क्या खरीद के रेडीमेड सब कुरकुरे ये सब खाते रहते हैं। इसलिए हम लोग सब लोग गिरे हुए। जब तक तुम्हें और हमें हमारे जन्म पर, हमारे चर्म पर, हमारे देश पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे जाति पर हमारा गर्व नहीं होगा, तब तक हम लोग ऐसे बौद्धिक गुलाम बन के रहेंगे। वी विल बी ऑलवेज स्लेव्स, बुद्धि के सर पर हम नौकर रहेंगे, गुलाम रहेंगे। इसको कहते हैं बौद्धिक गुलामगिरी, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। आप भी अपने मन में सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है, जीन पैंट पहनना अच्छा लगता है कि इंडियन पहराव अच्छा लगता है? तो आप समझ, आप अपने आप निर्णय लें, मुझे बताना नहीं। आप बौद्धिक गुलाम है पश्चिम संस्कृति के कि भारतवर्ष में आपको गर्व है, या आप खुद ही अपना प्रश्न पूछकर खुद ही आंसर कर लीजिए, सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए। विदेश में आपको पता नहीं है, इंग्लैंड में आप जाओगे ना तो आपके मल मूत्र का जो पानी है वही शुद्ध करके फिर आपके ड्रिंकिंग वाटर में आता है, निर्जंतुक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं पीने में उसमें। लेकिन एसेंशियली वाटर आपका टॉयलेट का है, क्योंकि वर्षा वहाँ पर हमेशा रिमझिम रिमझिम ही होती रहती है, और रिमझिम रिमझिम आपकी प्यास बुझाने के काबिल नहीं है। तो सारा पानी जो है ना वो तो खरीदना पड़ता है, और वो रिसाइकल कर दें पूरा। गल्फ कंट्रीज में समुद्र का नमकीन पानी डिसेलिनेट करते हैं और सारा पानी खरीदना पड़ता है। भारतवर्ष ऐसा एक ही देश है जहाँ पर दो दो वर्षा होती है, नल में पानी रहता है, वो पानी गर्म करके आप पी सकते हो। भारतवर्ष अभी इंग्लैंड की बात बताऊँ आपको, केवल 5 प्रकार की बेरीज वहाँ पर खुद के आती है, एक रास्पबेरी, एक स्ट्रॉबेरी, एक अमुक बेरी, एक तमुक बेरी, 5 बेरी आती है खाली बस। उसके अलावा इंग्लैंड में कोई भी अन्न नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, चावल नहीं, गेहूँ नहीं, आलू नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। अभी अभी वो ग्रीन हाउस करके वो ब्रोकोली वगैरह बनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड का सारा अन्न धान्य भारत से आता है। कितने लोगों को पता है? और आप लोगों को उनके सैंडविच पर गर्व है, और वो हम लोग से अन्न धान्य खरीदते हैं। आपको उन पर बर्गर पर प्रेम है, सैंडविच पर प्रेम है। हमारे घर पे एक बहुत बड़े बिलियनियर हमारे घर पे आए थे, टेनिस के चैंपियन थे एक समय के, तो उनको ना हमारी आयुर्वेद डॉक्टर ने जांच किया, हृदय का उनका ऑपरेशन हुआ हमारे पास। तो फिर हमने कहा आपको डाइट चेंज करना चाहिए क्योंकि वो तो बार बार बीमारी हो जाएगी। मैंने कहा आपके शरीर में वात बहुत बड़ा हुआ है। डॉक्टर ने सहज पूछा आप क्या खाते हो? देखो हाँ, करोड़पति अब्जोपति आदमी है, कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी पी सकता है, चाहिए उसको खरीद सकता है, दुनिया में विदेश से खाना आ सकता है उसका, इतना पैसा है उसके पास। ब्रेकफास्ट में बनाना सैंडविच खाता है, लंच में पीनट बटर सैंडविच खाता है, और शाम को टमाटो आलू का सैंडविच खाता है। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हो गया उसका, और कुछ नहीं खाता है। तो डॉक्टर ने बताया आप ब्रेड खाओगे तो वात बढ़ेगा आपका, आपको रोटी खाना पड़ेगा। और रोटी क्या होती है? तो समझाया उसको रोटी क्या होती है, तो मेरी बीवी नहीं बना सकती उसको। तो हमने उनके लिए यहाँ बैठकर अमेरिका के मॉल में रिसर्च किया कि रोटी नाम का क्या मिल सकता है वहाँ पर। तो एक वस्तु मिली, टॉर्टिलोज, तो रोटी का सिस्टर है, मिलता है वहाँ पर मॉल में, वो खाना शुरू किया। तो हमने सोचा अब जो वधि धन होकर क्या लाभ है उसकी, जिसके पास चावल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, मिठाइयाँ 50 प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार के सब्जियाँ नहीं है, उसको पता ही नहीं है, सुबह शाम ब्रेड और ब्रेड और ब्रेड वही पता है उनको। ये कोई संस्कृति है? कोई रिश्ते नाते नहीं है? 10 साल का हो गया तो बाहर चलो लड़का निकल जाता है, लड़की भी निकल जाती है, अपना अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब चलते रहते हैं। तो आज आप पंढरपुर में बैठे हुए हो, भारत का वैभव में से एक वैभव है ये, ऐसे धाम। अमेरिका में एक भी धाम नहीं है, पता है आपको? एक भी होली स्पॉट नहीं है, एक भी नहीं है। वेर यू डू पिलग्रिमेज टेल मी? अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है कहाँ करेंगे आप? कैलिफोर्निया में करेंगे, न्यूयॉर्क में करेंगे, बॉस्टन में करेंगे, फिर शिकागो में करेंगे, किधर करेंगे आप? आपको भारत में आना पड़ेगा। यहाँ पर होल सेल में अनंत होली प्लेस है। ये जगह जो है ना, अभी सुबह हम खाते समय चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर ऐसे अनंत स्थान हैं जो हमको भी पता नहीं है। यहाँ रह के रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा इस स्थान में ये भी हुआ था। तो सूर्यनारायण का मंदिर है, तो संध्यावली का मंदिर है, विष्णुपदी का मंदिर है, उधर पुष्पामती नदी का संगम है वहाँ पर, वे आगे जाकर वेन्ना को मिलती है, कृष्णा को मिलती है। कितने सारे स्थान हैं यहाँ पर, एक है वो, खाली पंढरपुर की बात कर रहे हैं। आप ब्रज में आ जाओ, ब्रज में आ जाओ, रूप गोस्वामी स्वयं लिखते हैं 6.6 बिलियन होली प्लेसेस आर देयर। कितने हो गए बिलियन? मतलब 660 मिलियन, मतलब 6,600 लक्ष, यानी 66 कोटि स्थान है जहाँ भगवान ने लीला किया है। इतनी लीलाएं किए हुए स्थान एक ब्रज में उपस्थित है, एक ब्रज में उपस्थित है। आप सोचो हम देख पाएंगे क्या? आपको पता ही नहीं है, कई जगह पर स्थान नष्ट होकर बिल्डिंगें बनी हुई है। जितने जितने प्रकट है उतने आप जानते हो, और वो भी अनंत है। मुझे बोलते प्रभु जी आपको इतना सब कुछ मालूम है, मैं बोलता हूँ इतना सब नहीं, वो एक कणों मात्र है जो मुझे पता है, एक्चुअल वास्तव में कितने हैं तो अभी रिसर्च करना बाकी है। और आपको लगता है मुझे जितना पता है वो तो बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन मुझे पता है कि जितना मुझे पता है वो बहुत कम, थोड़ा सा है परसेंटेज वाइज। तो फिर वो एक वृंदावन है, फिर द्वारका भी है, फिर तिरुपति भी है, फिर श्रीरंगम भी है, फिर मदुराई भी है, फिर ऊपर बद्रीनाथ भी है। आपको लगता है एक ही बद्रीनाथ है, पंच बद्री है। आपको लगता है एक ही केदारनाथ है, पंच केदार है वहाँ पर। और गुप्त काशी भी है, क्या नहीं है वहाँ पर। उत्तरकाशी में भी कितने स्थान है, लोग खाली उधर रात को रुकते हैं, सब भाग जाते हैं वहाँ से। उत्तरकाशी में कितने स्थान है, ऐसा हमारा देश है। और जगह जगह पर ऐसे ऐसे भोजन की व्यवस्था है, हैरान हो जाओगे। 26 प्रकार के भोजन भारत में मिलते हैं। पहाड़ों में गया था मैं, तो पहाड़ों के ऊपर पहाड़ में मैं कई बार घुमा हूँ वहाँ जाकर। मुझे आदत है लोगों से मिलने की, बात करने की। मैं उनको पूछा पहाड़ में जाकर कि आप सिटी में कितने बार जाते हो, तो कहते हैं 3-4 महीने के बाद में एक बार नीचे जाते हैं, क्योंकि ऊपर कोई बस आती नहीं, कोई मोटरसाइकिल होगा तो जा सकते हैं। पर तब क्या करते हो, क्या खाते हो, कहते हैं हमारे खेत में जो उगता है वही हम खाते हैं। अभी अगर गेहूँ का समय है तो गेहूँ खाते हैं, या बारिश समय तो चावल लगाते हैं तो चावल खाते हैं, और बीच में बागाई मतलब कभी आलू लगाते हैं, कभी कॉलीफ्लावर लगाते हैं, कभी कैबेज लगाते हैं, कभी करेला लगाते हैं, कभी कैप्सिकम लगाते हैं, कभी कोथमीर लगाते हैं, कभी पुदीना लगाते हैं, वही को खाते हैं। कोई चाव नहीं है उनको, पास्ता नहीं बनाया, पिज्ज़ा नहीं बनाया, चाउमीन नहीं बनाया, सैंडविच तो खाया ही नहीं, बिस्कुट नहीं खाया, ऐसा कुछ है ही नहीं। जवान लड़के लड़कियाँ आदमी औरत सब लोग संतुष्ट हैं। 3.5 महीने में उनको नीचे लगता भी नहीं कि मार्केट जाना चाहिए, सोचो आप। और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, केवल गोबर के खाद का बना हुआ, तो यहाँ पर 4 गुना दाम देते हैं उसके लिए, हम ऑर्गेनिक फूड के लिए, वो भी नकली और चीटिंग होता है उसके अंदर, और वो केवल ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। ऐसे शुद्ध हवा में रहते हैं, पवित्र हवा में। वहाँ पर एक बद्री नस्ल की गाय होती है, बद्री नस्ल एक महा गंगा हरा नाम की गाय है, और एक बद्री नाम की गाय है। वो पहाड़ की छोटी सी गाय है, वो दिन में केवल 1 लीटर दूध देती है, लेकिन आम गाय से 20 गुना अधिक पावर उसके अंदर है, और उसके घी में आम घी से 100 गुना अधिक पावर है। वो नस्ल भी लोगों ने ना जर्सी के साथ मिला के हाइब्रिड करके वो उसको भी नाश कर दिया लोगों ने, लाभ के हेतु, स्वार्थ के हेतु। लेकिन बद्री गाय अगर आप टिकेगी, उसका दूध मिलेगा और आप पियेंगे, ऐसी शक्ति प्राप्त होगी आपको। केवल वो छोड़ भी देंगे ना उसको, तो भी पहाड़ में जड़ी बूटी चरती है वो, सोचो आप कितना ऐश्वर्य है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, देहरादून जाना चाहिए, बम्बई जाना चाहिए, वहाँ नौकरी करनी चाहिए, वहाँ पैकेट का फूड खाना चाहिए, वहाँ पर मॉल से रेडीमेड फूड, बॉटल फूड, टैंड फूड खाना चाहिए। वो एडवांसमेंट है, अमेरिका में सब टैंड फूड मिलता है, पके हुए चने, पके हुए मूंग दाल, पके हुए सब रेडीमेड मिलता है, पानी फेंक दो उसको उबालो खाओ, फिर कहाँ से भी टेस्ट करो, सब जगह फंगस मिलेगा आपको, बॉडी में फंगस ही ग्रोथ होगा, किधर से भी करो स्वैब ले लो। और हम सोचते हैं हमारी एडवांसमेंट है वो। लेकिन मेरे घर पे एक सन्यासी आए थे, उनका नाम था हिज होलीनेस देवामृत स्वामी, भोजन के लिए आए थे। तो मेरी पत्नी ने 5-6 आइटम बनाए थे बड़े प्रेम से, और उन्होंने पहले क्या ना, उनको फ्रैंकी खाने की आदत है। हम लोग ऐसे अच्छे तरह रोटी का टुकड़ा निकलते हैं, एक सब्जी का हिस्सा लेते हैं और खाते हैं, फिर दूसरा का खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक रोटी लेते हैं, सब्जी डालते हैं, उसका रोल बनाते हैं और रोल खाते रहते हैं ऐसे। जैसे वो खा रहे थे, मुझे पूछते हैं ये आपके पत्नी ने बनाया, हाँ महाराज। फिर वो खाना हो गया, दूसरा फिर चावल खाना शुरू किया, फिर वो खाया तो ये भी आपकी पत्नी ने बनाया, बोला महाराज ये भी पत्नी ने। फिर कुछ पकौड़ा जैसा बनाया था वो उठा के खाया, बोला ये आपने आपके पत्नी ने बनाया, बोले हाँ महाराज मेरी पत्नी ने बनाया। फिर मिठाई का टर्न आया, फिर वो खाने लगे, तो ये स्वीट भी आपकी पत्नी ने बनाया, हाँ महाराज। मतलब ये सब भी आपके पत्नी ने बनाया, बोले हाँ महाराज। रोज बनाती हैं, बोले हाँ महाराज। तो कहते हैं कि अमेरिका में केवल मिलियनेयर की पत्नी जो है वो कभी कभी शौक से खाना बनाती है घर में, बाकी सारे पति पत्नी बाहर से खाना मंगा के खाते हैं। दोनों काम करते हैं और दोनों बाहर से ऑर्डर करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज कौशल्य किसमें है, कहाँ पर अच्छा ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे अभी आप बोलेंगे शादी होने की, किसको लड़की देख रहे हैं, क्या क्या बनाती हो आप, डोसा बना लेती हो, समोसा बना लेती हो, हाँ। अभी क्या पूछते हैं, कहाँ से ऑर्डर करती हो, ये उसके एक्सपर्ट है। कोई खाना नहीं बनाता है, सारे नौकरी करते हैं, और खाना भी लाते हैं वो टिंड खाना लाते हैं, उसको डीप फ्रिज में रखते हैं, तो खाना होगा तो उठाकर माइक्रो में रखते हैं, 3-7 सेकंड में गर्म करते हैं, प्लेट डाल के खाते हैं उसको। ये भी कोई ज़िंदगी है। हमारे भारतवर्ष में ताज़ी रोटी खाते हैं, गरम गरम सब्जी, गरम गरम दाल चावल खाते हैं हम लोग, सुबह का चावल शाम को भी नहीं खाते हैं। और वो 28 दिन का बासी राइस भी गरम करके ओवन में खाते हैं, पार्टी में भी खिलाते लोगों को। और उस संस्कृति को हम लोग कितना सम्मान देते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा बोलना चाहते हैं, उनके जैसा पहनना चाहते हैं, उनके जैसे खाना चाहते हैं। ये प्रगति का लक्षण नहीं है, यह अधोगति का लक्षण है। जिस देश में देसी गाय का दूध नहीं मिलता है वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऐश्वर्य है वो, रोज़ देसी गाय का दूध पीना फ्रेश। उस गाय का घी खाते हैं हम, उस गाय का मक्खन खाते हैं, उस गाय का छाछ पीते हैं, ये हमारा ऐश्वर्य है। हम लोग सैंडविच नहीं खाते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है वो। हमारी संस्कृति, हमारी जाति, हमारा देश, हमारी भूमि कौन सा खाना आपको खिला रहा है उसको आप खाओ और उस पर गर्व करना सीखो। विदेश को देखकर उनका गुलाम मत बनो। अरे क्या पंढरपुर में क्या है, डोसा नहीं मिलता इधर किधर, क्या है फ़ायदा क्या इधर आके, ऐसा हमको लगता है। हमारा जो ऐश्वर्य है वो छोड़कर आप सब ढूंढ रहे हैं जो पश्चिमी चीज़ें हैं। देखो आप रास्ते में पंढरपुर का मेला लग रहा है, भगवान पंढरपुर को मिलने आ रहे हैं सब लोग। रोड पे क्या बेच रहे हैं, जीन पैंट बेच रहे हैं, ट्रैक सूट बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं रास्ते में, सब पश्चिम की चीज़ें बेच रहे हैं। मोबाइल स्टैंड बेच रहे हैं एकादशी के मेले में, बोलो क्यों, लोगों को चाहिए इसलिए बेचते हैं। आप बोलो हमको गाय का शुद्ध घी का घी चाहिए तो वो उसका ठेला लगेगा इधर, उसका दुकान लगेंगे। लोगों को पता है आपको क्या चाहिए, वही दुकान लगाते हैं। और आधे से अधिक जनता जो है आते हैं पंढरपुर में, लेकिन आधे जनता खरीदी में लगे रहती है इधर, क्या क्या उनको चाहिए वही खरीदते रहते हैं। बीच में कभी जाके चक्कर मार के आते हैं, बाकी टाइम उनका यही है घूमने फिरने का। कारण क्या है इसका, हमारे ऐश्वर्य का हमको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है इसलिए आकर्षण नहीं है। और ज्ञान किसका है, उनके संस्कृति का, इसलिए उसके लिए आकर्षण है। स्कूल में ही सोचता है विदेश जाना है, अपने देश में क्या रखा है ये उसको पढ़ाया जाता है। माँ बाप भी गर्व करते हैं, अरे मेरी लड़की US में पढ़ रही है, अरे मेरा लड़का UK में पढ़ रहा है। माँ बाप भी उसको गर्व करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसका ही गौरव करते हैं। तो बच्चा भी सोचता है कि वहाँ जाना चाहिए मुझे। जिस माँ बाप का बेटा परदेश में है वो बड़े कॉलर टाइट करके घूमते हैं, और पड़ोसों भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी वहाँ जाना चाहिए। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी। और पूरा फ्रस्ट्रेट होने के बाद में जब वैफल्यग्रस्त हो जाएंगे फिर शांति ढूंढने के लिए हिमालय में आएंगे। पूरा वहाँ का पूरा चूसा हुआ चौथा चौंकने के बाद में जब थक जाएंगे तो मनुष्य शांति ढूंढने के लिए भी भारत में आएंगे। बोले बाबा को मिलेंगे, कोई योग सीखेंगे, कोई प्राणायाम सीखेंगे, कोई शांति नहीं मन में, इतना भोग किया फिर भी शांति नहीं। तो आज अगर आप पंढरपुर में आए हो, विट्ठल की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आप लोग आए हो यहाँ। भारतीय संस्कृति के बारे में सीखो, रिसर्च करो, क्या क्या हमारा कल्चर है, क्या क्या भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, जगन्नाथ को क्या क्या भोजन लगाते हैं, कौन से टाइम पर कौन सा कौन 56 भोग लगाते हैं, इसका रिसर्च करो, वो घर में बनाने का प्रयास करो। कितने लोगों को पता है कल रसगुल्ला डे है, कि हमने आपको मैसेज भेजा है इसलिए। ये हमारी संस्कृति है, मतलब हम लोग रोज डे और अमुक डे और तमुक डे बनाते हैं। भारत में उत्सव की कमी नहीं है, भारत में ये फालतू डेज सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मदर्स डे, अरे रोज जो भारत संस्कृति में माँ का पैर छूता है उसको मदर्स डे करने की जरूरत क्या है। जो साल भर मदर को नहीं पूछता है वो साल में एक दिन मदर को जाके मदर मदर चुम्मा लेता है उसका, उसको गिफ्ट देता है, और फिर 365 दिन उसको भूल जाता है। उसके लिए मदर्स डे जरूरी है, इसलिए मदर्स डे बनाया है। हमारे लिए संस्कृति क्या है, जितना दिन मेरी माँ मेरे पास थी अंत तक रोज में उसके पैर 2 बार छूता था, सुबह और शाम, एवरी डे। उसके लिए मदर्स डे की जरूरत नहीं है, रोज़ माँ की सेवा करता है। कब सीखेंगे हम लोग मदर्स डे फादर्स डे, व्हाट इज़ द नीड, रोज इनके पैर छूना है, रोज इनकी सेवा करनी है, उनका डे मनाने की जरूरत क्या है। उनका जन्मदिन मनाओ, उनका और कोई दिन मनाओ, फिर मदर्स डे के दिन ही खाली मदर को चुम्मा देना है और पैर छूना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए विट्ठल के धाम में आए हो, वादा करो विट्ठल को कि आपके देश की संस्कृति को हम सीखेंगे, आपके द्वारा दिए गए कथाओं को हम सुनेंगे, और वैसे हमारा जीवन समृद्ध करेंगे। नहीं तो जीवन में क्या है, हेलो और गेलो, महाराज जी बता रहे थे ना, हलान गेला, एंटीना वहाँ लगा था पश्चिम दिशा में, शरीर भारत में था, एंटीना वहाँ लगा था, चड्डी उनकी पहन रहे, सोच उनकी लेके चल रहे और रहे यहाँ रहे कोसते हुए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, यही कहते हुए यहाँ रह रहे, वहाँ जाने की तमन्ना लेकर फिर अगले जन्म में वही जन्म लेंगे, फिर वही थर्ड क्लास जिंदगी जियेंगे सैंडविच वाली, और फिर शांति ढूंढे ढूंढे हिमालय में आएंगे, फिर भी नहीं मिलेगी, क्या करें? चार चार शादी टूट गई है, कितने बच्चे कहाँ गए पता नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल नहीं है, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, ड्रग लेते हैं, डिवोर्स हो चुके हैं, फिर भी हमको उनको देख के बड़ा गर्व लगता है क्योंकि उनकी चमड़ी गोरी है। संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बताओ। एक फैमिली यूनिट नहीं है उधर, एक कोई ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ माँ बाप बेटे साथ में रहते हैं। किसी औरत को आप पूछ नहीं सकते हैं आपका पति कहाँ है, वहाँ का कल्चर है डोंट आस्क एनी वुमन वेयर इज योर हस्बैंड, बट इज अ वेरी बैड हिस्ट्री, कितने हस्बैंड को डिवोर्स दिया है वो बोले, एक लड़की साथ में रहेगी उसके बच्चा साथ में रहेगा, पूछना नहीं है किसका बच्चा है और पति कहाँ, ये भी पूछना नहीं है, मुझे वहाँ पर बताया गया डोंट आस्क व्हाट इज योर हस्बैंड डूइंग वेयर इज ही, क्योंकि ऐसा भयंकर स्थिति है वहाँ पर। हमारे आप हम पूछते हैं आपका पति क्या करते हैं, वहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये हमारी पावन भूमि है, सब संतों ने जन्म लिया इसके ऊपर, सब संतों की चरण धूली लगी यहाँ पर, एक एक राज्य में सैकड़ों संत हैं, एक नहीं है, एक तुकाराम नहीं है, हजारों संत हैं, एक महाराष्ट्र में, पंजाब में जाओ हजारों संत हैं वहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जाओ, हमारे कर्नाटक में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, केरला में जाओ, हर जगह सैकड़ों संत हैं, सब लोग प्रेम भक्ति सिखाते हैं यहाँ पर, सब लोग में चमत्कारिक आयुष्य चरित्र हैं, कब उनसे प्रेरणा लेंगे? हमको सब गोरे लोग अच्छे लगते हैं, उनका ही संस्कृति अच्छा लगता है, सब बच्चों को वहीं भेजते हैं, मेरे पास आधा परिवार खाली मैं और मेरा एक छोटा भाई यहाँ पर है, बाकी सारा परिवार अमेरिका में है, उनके बच्चों को पता ही नहीं गणपति क्या है, नवरात्रि क्या है, दिवाली क्या है, दशहरा क्या है, पता ही नहीं है उनको, वो तो एलिफेंट गॉड एंड मंकी गॉड यही पता है उनको, कुछ पता ही नहीं, और हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों की भी ये हालत होगी, ध्यान रखना। अगर आज हमने निश्चय नहीं किया तो हमारी संस्कृति भी वही होने वाली है, और हो रही है धीरे धीरे, ऐसा है। एनीवे सो निम्बार्काचार्य ने भी पंढरपुर को भेंट दी है, इधर एक तांबड़ा मारुति मंदिर है विठ्ठल जी के पास, वहाँ पर उनका आश्रम है। शंकराचार्य, शंकर जी के अवतार, वो भी पंढरपुर आए थे, एक फेमस अष्टकम है पांडुरंगाष्टकम, उसका रचना हमारे शंकराचार्य ने की, उन्होंने ये बात सबसे पहले कही थी अपने श्लोक में कि पांडुरंग के कमर पे हाथ क्यों हैं, क्योंकि वो सब लोगों को बता रहे हैं कि भवसागर मेरे पास आने से कमर जैसा ऊंचा हो जाता है, उतना मतलब उतना ही गहरा है, ये बात सबसे पहली शंकराचार्य ने कही थी। रामानुजाचार्य भी पंढरपुर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर राजा विष्णुवर्धन को जो जैन राजा था उसको वैष्णव दीक्षा दिया उन्होंने, और विठ्ठल का महात्म्य और प्रचार उन्होंने बढ़ाया। रामानुजाचार्य कौन थे, लक्ष्मण जी के अवतार, वो श्रीरंगम से आए थे दक्षिण प्रदेश से। नामदेव जी महाराज का जन्म पंढरपुर में हुआ था, दामाजी और गुणाई उनके माता पिता और माता का नाम था, दामाजी पिताजी का, गुणाई माता का। आषाढ़ इसी महीने के अगले पक्ष में त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ था 1272 में। उन्होंने भगवान को कहा था मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे भक्तों की चरण रज चाहिए। बड़ी लंबी कहानी है उनके नामदेव की, नामदेव शिम्पी थे पता है आपको, नामदेव टेलर थे, और टेलर थे इसलिए उनको मंदिर में आने का हले अलाउड नहीं था, लेकिन टेलर थे इसलिए भगवान के कपड़े सिलाने के लिए उनको अंदर बुलाते थे, लेकिन कैसे बुलाते थे, आँख में पट्टी बांधकर, क्योंकि वो शूद्र मानते थे उनको, लेकिन टेलर है। अभी देखो आपका मंदिर में समझो जगन्नाथ जी को राधा गिरधारी को रखा है समझो, और वहाँ पर लाइट चले जाती है, बल्ब टूट जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो थोड़े भक्त है, वो तो मांसाहारी नशा सब कुछ करने वाला है, लेकिन उसको लाना पड़ता है अंदर, क्या करे, सीढ़ी लेके चढ़ता है, वो ट्यूबलाइट ठीक करता है, बल्ब ठीक करता है, चला जाता है, फिर वो गंगा जल छिड़क के साफ करते हैं, फिर पूजा करते हैं, लेकिन क्या करें। वैसे ही उनके हिसाब से नामदेव शिम्पी है, यानी टेलर है, शूद्र जाति का है, वो मंदिर में नहीं आ सकता है, लेकिन भगवान के कपड़े चलाने के लिए माप तो लेना ज़रूरी है, तो ये इसको ब्लाइंड फोल्ड करके भगवान विट्ठल के माप लेता था वो, और भगवान विट्ठल से उसका इतना प्रेम था, भगवान विट्ठल भी चालाकी करते थे। क्या करते थे, जब वो माप लेने आता था तो कम हो जाते थे, तो छोटा माप लेते थे, और जब सिला के लाता था तो विट्ठल जी बड़े हो जाते थे। तो लोग कहते थे, अरे कैसा टेलर है तू, तो इतना टाइट क्यों सिला है, तो ढीला करके ले गया। तो ढीला करके लेके आते थे तो वो और पतले हो जाते थे, लेकिन इतना ढीला कर दिया तुमने। ऐसे अनंत बार विट्ठल जी उनका ढीला करते थे। नामदेव मेरे पास बार बार आता रहे, इसके लिए विट्ठल जी आंखा छोटा बड़ा करते थे। अभी अंधे वो क्या पता चलेगा, मतलब जिसका आँख बंद करके रखे। ऐसे बहुत सारी कहानी उनकी, एंड बताता हूँ उनका एंड। वो नामदेव जी ऐसे एक संत थे जिन्होंने पंजाब में भी प्रचार किया, इसलिए पंजाब में भी नामदेव के हिंदी में दोहा है, और पंजाब में भी नामदेव को फॉलो करने वाले बहुत सारे पंजाबी लोग हैं। आज भी नामदेव को बहुत मानते हैं, उनका बहुत सारे मंदिर है और मठ है उनके पंजाब में। एंड में यहाँ पर आए, जन्म भी यहाँ हुआ था, एंड में भी यहाँ पर आए। उन्होंने कहा, भगवान मुझे आपके चरणों की, भक्तों के चरणों की रज चाहिए। ये भगवान के पश्चिम द्वार ना, मेन द्वार जहाँ नामदेव की पैरी है, पूर्व द्वार, वहाँ खड़े रहकर बोले। अचानक वो आके स्टेप है ना स्टेप, पैरी वो भंग हो गई और जगह निर्माण हो गई अंदर। जैसे पैरी है ना, अभी आप चलने को गैप तो नहीं, फिर वो सेपरेट हो गई। उसके अंदर नामदेव ने छलांग लगाई, नामदेव ने छलांग लगाई तो नामदेव की शिष्य थी जनाबाई, जो मैंने कहने कथा बताई ना आपको, पदकाची सोरी, उसने भी छलांग लगाई। फिर नामदेव के साथ उसके माता पिता भी थे, नामाजी और गोणाई, उन्होंने भी छलांग लगाई। कितने हो गए, नामदेव, जनाबाई, माता पिता, चार हो गए ना। फिर नामदेव की पत्नी ने भी छलांग लगाई, कितने हो गए, पाँच हो गए। फिर चार पुत्र थे, उन्होंने भी छलांग लगाई, कितने हो गए, हाँ नौ हो गए। उसके बाद तीन उनकी बहुएँ थी, थ्री डॉटर इन लॉज, चार पुत्र थे, तीन विवाहित थे, तो तीन बहुएँ थी, उन्होंने भी छलांग लगाई उसके अंदर, कितने हो गए। उसके बाद एक कन्या थी नामदेव की, उन्होंने भी छलांग लगाई, और एक बहन थी, उसने भी छलांग लगाई, कितने हो गए, 14 लोगों ने छलांग लगाई और वो पायरी बंद हो गई, जीवंत समाधि लिया उन्होंने। 14 लोग जनाबाई के साथ उस पायरी के अंदर है, इसलिए उसको अभी कोई चढ़ते नहीं, उसके ऊपर खाली पूजन करते। उन्होंने इच्छा करके किया था कि भक्तों के चरणों की धूली मिलनी चाहिए, इसलिए पायरी में अपने आप को समाविष्ट कर लिया। ऐसे ऐसे हमारे संत हुए हैं, यहाँ क्या कहें आपको। एक ब्रज में जाएंगे ना आप, तो एक ब्रज में भी ऐसे अनंत संत हैं, एक ब्रज में किताब है बड़ी इतनी, ब्रज के संत, चमत्कारी संत हुए यहाँ पर, एक जगह पर। अभी तो बाकी जगह की बात छोड़ दो, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहाँ पर अनंत संत हैं, मुस्लिम संत हैं। ब्रज में भी कितनी मुस्लिम स्त्रियाँ और पुरुष संत बने हुए, रस खान, ताज बीबी, बड़े बड़े संत बने हुए हैं, प्रेम रस में रत हैं सब लोग, अपना धर्म छोड़कर कृष्ण के प्रेम में फंसे हुए हैं। उनके कितने कितने बड़े दोहे और कितने बड़े अभिषेक, क्या बोलते हैं उसको, भजन लिखे उन्होंने, रसिया लिखे हुए हैं, साक्षात्कार हुए भगवान को उनके। ऐसी हमारी भूमि है जिस पर हमें गर्व करना सीखना चाहिए, तभी यहाँ पर हमारा यहाँ आना सफल है। पर यहाँ पर आए, कुछ दिन सेवा किया, फिर जाकर मुंबई में पश्चिमा संस्कृति का अंगीकार किया, उनके जैसे कपड़े पहने, उनका विचार किया, उनके जैसा रहना शुरू किया, तो आपका यहाँ पे आना एक दृष्टि से बेकार है। यहाँ पर आकर आपको वो स्वाभिमान लेके जाना चाहिए, हमारी वैष्णव संस्कृति का, हमारे भगवान का, हमारे धाम का, हमारे कल्चर का, तो आपकी धाम यात्रा सफल है। 50 जगह मत भटको, आपका जन्म जन्म से ही श्रेष्ठ है, ये पता करो आप कि आपका जन्म जो है वो जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अनंत जन्म परदेश में रहकर पुण्य कर्म करने के बाद किसी जीव को भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदों में लिखा है। और आपका जन्म ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, इसका अर्थ आपने पहले जन्मों में कई जन्म पुण्य किए, इसलिए आप इस शरीर में भारतवर्ष में आए हो। उसके ऊपर आपका भाग्य क्या है, आपका संतों से मुलाकात कहीं ना कहीं हुआ है, भक्ति मार्ग का परिचय हुआ है, और संग आपको प्राप्त है, भगवान से परिचय हुआ है, धाम से परिचय हुआ है, तो आपको रुकना ही नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, आपको केवल आगे बढ़ना है। सदैव सैनिका पुढ़े जाए से न मागुती तुआ कदी फिराए से, ऐसा हमारा जिंदगी होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी जाओ अपने संस्कृति का गर्व से प्रचार करो, शर्मिंदा मत हो, परदेश आओ तो बोलो आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, द ग्रेट इंडिया। मैं परदेश में गया था कुछ समय के लिए तो लोग वहाँ शर्माते हैं बताने के लिए कि मैं इंडियन हूँ, उनको बड़ी शर्म आती है। और वहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों को बड़े आदर से दिखते हैं, ब्रिटिश अमेरिकन, लेकिन खुद भारतीय है तो उसको भारत का अनुभव ही अभिमान ही नहीं है, शर्मिंदा होकर छुपा छुपा के रहते हैं। इसे लानत है कि डॉलर और रियाल कमाने के लिए अपने क्या कहते हैं अपने ज़मीर को भी बेच देते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ सुख के लिए, कोई अभिमान नहीं संस्कृति का, सब कुछ छोड़कर वहाँ पर कुछ डॉलर और पाउंड के लिए सब कुछ बेच के रह सकते हैं। नहीं जीना हमको ऐसे, हमको गर्व से जीना है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, हमारे भगवान इतने श्रेष्ठ है, कितने वैरायटी के भगवान हैं हमारे। जगन्नाथपुरी में एक बैठे हैं, द्वारका में दूसरे बैठे हैं, अयोध्या में तीसरे बैठे हैं, तिरुपति में रंग श्रीरंगम में कितने भगवान के प्रकार, भगवान के कितने प्रकार हैं हमारे, एक भगवान कितने रूप में आपको आकर्षित कर रहे हैं। क्या है विदेश में, इंग्लैंड में क्या है, अमेरिका में क्या है जिसका इतना, अभी रुको थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सब लोग भाग के इधर ही आएंगे, सबकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, डॉलर रुपए का पाउंड का हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा, फिर सारे हमारे जो भिखारी वहाँ गए थे फिर यहाँ पर भी मांगने के लिए आएंगे। तो यही रहो, इसी पर गर्व करो, आधी रोटी खा के रहो लेकिन अपनी रोटी खाओ, उनका सैंडविच मत खाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।